देखते हैं तफसीर सूरह तौबा आयत नंबर 117 से लेके 129 तक। और ये तफसीर ऐसी है कि अगर आप शायद खुद पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप लोगों की भरपूर तवज्जो चाहिए होगी। ठीक है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि सारा तबसरा ये गजवाए तबूक पे हो रहा है, और गजवाए तबूक को भी क्या कहते हैं, जैशुल आसरा, ऐसा लश्कर जो तंगी का लश्कर था। ठीक है, और आपको मैं बता चुकी हूँ कि हालात उस वक्त इतने सख्त तंग थे, इतने तंग थे, ना कोई सवारियाँ थी, ना कोई खाने पीने को सही था, ना कोई सही, क्या मतलब, जिसको हम आज सोचते हैं ना कि हम एक खजूर खा के रोज़ा इफ्तार करें, और इफ्तारी तो उसके बाद शुरू होती है, वो खजूर उनकी पूरी पूरा मील था उनका। ठीक है, अब ऐसे हालात थे कि फसलें पक चुकी हुई थी, गर्मी शदीद थी, और इतनी दूर का सफ़र था, और वो भी उस ज़माने की सुपर पावर के साथ, कोई पिकनिक पे नहीं जा रहे थे। अब ऐसे हालात के अंदर बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया था। देखिए, पीछे भी कहत साली थी, वो साल कहत का था, और सफर भी मुश्किल था, और आगे भी जंग थी। तो ऐसे हालात में क्या गुजर रही थी मुसलमानों के ऊपर, यानी आप देखेंगे कि आसान नहीं है। ईमान ला के उसके बाद इस ईमान के तकाजे पूरे करने ज़रूरी हैं, और वो आसान नहीं होता। तो ऐसे हालात के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, देखते हैं यहाँ से लेके अभी आगे तक भी 127 आयत तक हम यही पढ़ेंगे, फिर आखिर की जो आयत दो आयतें हैं ना, वो फिर डिफरेंट बात एक उसमें है। तब अल्लाह आलन नबी, मेहरबान हुआ, मैंने आपको बताया ना तौबा का नहीं यहाँ पे तर्जुमा करेंगे क्योंकि आगे क्या है, आला, मेहरबान हुआ अल्लाह ताला किस पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वल मुहाजरीन और मुहाजरों पर, वल अंसार और अंसार पर। अच्छा, पहले यहां तक देख लेते हैं, फिर कौन से अंसार और कौन से सहाबा की बात हो रही है वो आगे अभी देखते हैं पहले, क्योंकि आयतें जरा लंबी लंबी हैं, तो उनके अंदर आप लॉस ना हो जाएं, इसलिए मैंने आपको कहा अगर आप खुद पढ़ेंगे तो शायद समझ ना आए, इसलिए तवज्जो से सुनना है। कि अल्लाह ताला मेहरबान हो गया, अल्लाह ताला ने नजरे रहमत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुहाजरीन पर और अंसार पर। कौन से खास एक ग्रुप है, जो अल्लदीन तबाउहु फी साआति अलउसरा, वो जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, किस वक्त, जो मुश्किल की घड़ी थी। कौन सी मुश्किल की घड़ी, जो जैशुल उसरा है ना तबूक, मिम बादी मा कैदा, इसके बाद के करीब था कि यजीगु कुलूब, के कज हो जाएं, फिर जाएं दिल, फरीक मिनहुम, एक फरीक के उनमें से, लेकिन सुम्मा तबा अलैहिम, फिर मेहरबान हुआ उन पर। यानी एक ग्रुप था जो तंगी की इस घड़ी में करीब था कि उनके दिल टेढ़े हो जाते हैं, इसलिए कि इम्तिहान बड़ा सख्त था। मैंने आपको जैसे बताया कि हालात इस कदर सख्त थे, अब देखिए ना, पैदल चल के कोई लोग जा रहे हैं, इतना लंबा सफर है, गर्मी शदीद थी, अब उसके अंदर खाने को भी कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं। तो अब आप बताएं कि इन सहाबा की तो बहुत बड़ा इम्तिहान था, और अगर अल्लाह ताला ने फरमाया करीब था, यानी फिरे नहीं लेकिन ऐसे करीब था, यानी अल्लाह ताला ने उनके ईमान इतने मजबूत रखे कि वो टेढ़पन से बच गए। तो अल्लाह ताला ने इन सब पर नजरे रहमत की। ताबा मतलब होता है लौट आना, रुजू करना, पलट आना। तो ये ताबा इला हो तो किसी तरह वापस आ जाना, ताबा आला हो तो मेहरबान हो जाना, नजरे रहमत कर देना। तो अल्लाह ताला ने नजरे रहमत की। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस बात पे, आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ सूरह तौबा आयत नंबर 43 में आप पढ़ चुके हैं, आफ अल्लाह अनका, اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان منافقوں ان کو کیوں اجازت دی جنہوں نے آپ کے جھوٹے بہانے بنائے تھے؟ پتہ تو چلتا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، تو ان کے بہانوں کو نہ قبول کرتے آپ. تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوا اپنے نبی پر، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرے مہاجرین اور انصار کی طرف بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، یعنی سختیاں اور جو سب صعوبتیں آئیں اور اس میں ان کے دلوں میں جو بھی بات آتی رہی، جو بھی کوئی وسوسہ آتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ نہیں کرنے والا ان کی کہ کیوں دل کے اندر یہ بات آئی، بلکہ وہ ان کی طرف مہربان ہوا. اب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس سفر میں سواری کے لیے بھی مشکلات تھیں، پانی کے لیے بھی اور زیادہ راہ کے لیے بھی. سواری کی مشکلات یہ تھی کہ 10 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، اور زیادہ راہ کی مشکلات یہ تھی کہ بعض اوقات مسلمانوں کی ایک جماعت باری باری کھجور کی، سوچیں آپ، ایک ایک کھجور بٹتی تھی پہلے، ٹھیک ہے، پھر آخر میں کیا حال ہو گیا، ایک کھجور ایک بندے کو نہیں مل رہی تھی، پھر ایک کھجور ایک جماعت کو ملتی تھی، ٹھیک ہے. اچھا پھر تو اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ جماعت باری باری کھجور کو لیتی اور کھجور کی گٹھلی کو چوستی تھی، اور اس ایک ایک چوس کے پھر پانی پی لیتا تھا. اللہ اکبر. اور ان کے پاس سڑے ہوئے جو تھے، وہ ناک پکڑ کے اس کا لقمہ کھاتے تھے، اور پانی کا تو یہ حال تھا، اتنی مشکل تھی کہ فرماتے ہیں کہ پانی کے لیے لوگ نکل کھڑے ہوئے پانی کی تلاش میں کہ کہیں سے پانی مل جائے، اور حال یہ تھا کہ ایسے لگ رہا تھا مر جائیں گے اب، کیونکہ پانی نہیں مل رہا تھا. انسان پانی کے بغیر نہیں سروائیو کر سکتا، بھوک سے پھر بھی انسان برداشت کر لیتا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سخت گرمیوں کے زمانے میں ہم نکلے تھے، اور ایک منزل میں تو پیاس کے مارے ہماری گردنیں ٹوٹنے لگی تھی، یہاں تک کہ پھر یہ حال ہوا کہ حالانکہ سواریاں دیکھیں کم تھی، لیکن پھر لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی نچوڑ کے اس پانی کو پیتے اور پھر اس کو اپنے کلیجے سے لگا لیتے. اتنی سختی، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. اللہ اکبر. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجیے. آپ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس آپ دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ بارش کر دے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو آپ نے دعا کی، اور پھر ابھی آپ کے ہاتھ بھی نیچے نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا، حتیٰ کہ سارے اہل لشکر نے اپنے برتن بھر لیے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ دوسرا مطلب یہ کیا ہوا کہ اتنی سختی تھی کہ ایسے قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جاتے. یعنی سختیوں کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، بعض دفعہ سختیاں اتنی ہو جاتی کہ انسان متزلزل ہو جاتا ہے. مگر دیکھیں نا، یہی ان کی پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایمان کتنے مضبوط تھے کہ وہ ان حالات میں بھی گھبرا کے ایمان سے نہیں پھر گئے. ہم تو واپس جا رہے ہیں، کیا مصیبت ہمارے کدھر لا کے ہمیں رکھ دیا، کچھ نہیں. مشکلیں آ رہی ہیں، مشکلیں ان سے ٹکرا رہی ہیں، اور مشکلیں ان سے ٹکرا کے چلی جاتی ہیں، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ نہیں اپنی جگہ سے ہلتے، ان کے ایمان مضبوط ہیں چٹانوں کی طرح. تو جو ان گھبرا کے ظاہر ہے دلوں میں کوئی باتیں آتی ہیں، تو یہ وسوسے بھی گناہ کی طرح ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے ان کی شان پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں کے ایمان کیسے تھے. بعض لوگ آج اٹھ کے کہتے ہیں صحابہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے، ایسے ہو گئے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی سختیاں برداشت کرنے پہ بھی دین کو نہیں چھوڑا انہوں نے، آپ کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے دین چھوڑ دیا ہوگا. उस वक्त कौन सी सख्ती थी ऐसी? तो ये बात गलत है। तो ये देखें, जो सौदा कर लेते ना अल्लाह ताला के साथ, हमने पिछली आयात में पढ़ा था, अल्लाह के साथ जिन्होंने जान और माल का सौदा कर लिया, तो फिर वो ऐसे होते हैं। फिर चाहे हालात तंगी के हैं, चाहे कुशादगी के हैं, वो नहीं दीन को छोड़ते, वो दीन पे चलते रहते हैं। और यहां से ये भी पता चला कि हर एक इंसान जो है वो अल्लाह ताला के आगे तौबा करने की जरूरत रखता है, चाहे वो नबी क्यों ना हो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा इस्तग़फार किया करते थे अल्लाह ताला से दिन में 100 मरतबा। तो हर कोई इंसान ये नहीं सोच सकता कि मैं तो बहुत इतना बड़ी चीज हूं कि मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं तौबा की, मैंने क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ रहमत से तवज्जो फरमाई, और इससे भी नबी के दर्जे बुलंद होते हैं कि जब वो इस्तिग़फार करते हैं तो उनके कोई गुनाह थोड़ी है कि जिनसे इस्तिग़फार कर रहे हैं, मगर जब वो इस्तिग़फार करते हैं तो उनके दर्जे बुलंद कर देता है अल्लाह ताला। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी कि इन आयात में ना खुद को जरूर रख के देखिएगा, ये सोचिएगा कि इन लोगों ने कितनी एक सख्तियां बर्दाश्त की, कितनी सख्तियां बर्दाश्त की। हमें ये पता चल जाए ना कि अफ्तारी के ऊपर हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो हम रोजा नहीं रखेंगे। हमें ये पता चल जाए ना गर्मी बहुत है तो हम एसी में बैठ के भी हम कहेंगे कि नहीं, गर्मी चूंकि बहुत है इसलिए आज मुझे कोई काम ना को, तो हम काम करने को तैयार नहीं होते दीन की खातिर, जैसे इन्होंने कुर्बानियां दी। तो सहाबा के ईमान इतने मजबूत होने के बावजूद, लेकिन दिल में कभी बात आ जाती है तो उस पे भी अल्लाह ने दरगुजर फरमा दिया। इन्नहु बिहिम रऊफ और रहीम, बेशक अल्लाह ताला उनके ऊपर रऊफ और रहीम है। रऊफ और रहीम का मतलब क्या? राफत क्या होती? कमजोर के ऊपर शफकत करना। तो अल्लाह ताला जानता है ना इंसान कमजोर है, तो उसके ऊपर शफीक होता है, मेहरबान होता है। तो वो किसी इंसान के वो उसकी वुसत से ज्यादा नहीं आजमाता। और अल्लाह किस पे मेहरबान हुआ? ये जो ताब अल्लाह है ना, ये अल नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, ये तीन हो गए, और चौथे यहाँ पे अगली आयत में आ रहे हैं। पहले उनकी उनकी एक्सप्लेनेशन आई कौन से वाले मुहाजिरीन और अंसार जिन्होंने सआत अल उसरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, यानी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये नहीं कहा हमने नहीं जाना, हमसे नहीं जाया जाता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वो साथ रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मुश्किल हालात में भी, जबकि उनके दिल करीब थे कि कजी की तरफ मायल हो जाते, लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा आपका। और अल्लाह ताला किस पे मेहरबान हुआ? वह आला सलासती, और तीन पर अल्लाह ताला मेहरबान हुआ। अल्लदीन खुल्लिफू, जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया, जिनका मामला डिले कर दिया गया। ये तीन लोग कौन थे जिनका मामला डिले हुआ? ये तीन सहाबाए कराम हैं, और इनकी स्टोरी आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इनकी क्या स्टोरी थी, और इनकी तौबा की वजह से इस सूरह का नाम सूरह तौबा है। ठीक है, तो ये सहाबा जो थे इनके भी ईमान में कोई शक नहीं है, ये बड़े ईमान वाले सहाबा कराम हैं, बड़े दर्जे वाले सहाबा कराम हैं, मगर कभी इंसान के साथ क्या होता है ये हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, क्योंकि ये इनमें से एक सहाबी लैलतुल उकबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, यानी वो जो काब बिन मालिक थे, वो उस वह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी ना हिजरत से पहले हज के मौके पे, उसमें भी साथ थे। तो इसलिए ये जो आप देखेंगे सारी कि इनके साथ क्या बातें हुई, क्या क्या इनके साथ मामला हुआ। तो ये काब बिन मालिक थे, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबिया, ये तीन सहाबी हैं जिनकी बात हो रही कि अल्लाह ताला ने इनकी तौबा भी कबूल कर ली, इनकी तरफ मेहरबान हो गया। किस वक्त कब तौबा कबूल की? हत्ता इदा दाकत अलैहिमुल अर्द, जब तंग हो गई इनके ऊपर जमीन। कभी कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं इंसान के लिए ना, कि उसको लगता है कि जमीन अपनी वुसत के बावजूद, बीमा रहा तो बावजूद इसके कि वो खुली थी, जमीन कितनी बड़ी है, लेकिन कभी कभी एक इंसान को भी लगता है कि मेरे लिए तंग हो गई है, हालांकि करोड़ों अरबों लोग उसके ऊपर रह रहे हो, लेकिन उसको लगता है मेरे लिए तंग हो गई है, हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं। वदाकत अलैहिम अनफुसुहुम, और उनकी जानें भी उन पर तंग हो गई, यानी इंसान को फिर अपनी जान भी भारी लगने लगती है, ये हाल हो जाता है। वदन्नु, और उन्होंने जान लिया, उन्होंने यकीन कर लिया, अल्ला मलजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, अल्लाह ताला से भागने की तो कोई जगह ही नहीं, उसे एस्केप नहीं है कोई, इल्ला इलैह मगर उसी की तरफ, पनाह उसकी उससे ही मिलनी है, उसे भाग के कहीं नहीं जा सकते। सुम्मा तब अलैहिम लियतूबू, फिर वो मेहरबान हुआ उन पर, लियतूबू ताकि वो तौबा करें। इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह की मेहरबानी होती है तो इंसान को तौफीक मिलती है तौबा की। अल्लाह की मेहरबानी ना हो तो बड़े बड़े गुनाह करके भी लोगों को तौफीक नहीं होती कि वो तौबा इस्तगफार कर लें, वो पलट आए अल्लाह की तरफ, वो रुजू कर लें। तो अल्लाह ताला मेहरबान हुआ उन पर ताकि वो तौबा करें, ताकि वो पलट आए उसकी तरफ। इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तो बहुत तौबा कबूल करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। तो अब इनकी जरा स्टोरी देख लेते हैं कि इनकी स्टोरी क्या थी, और ये हम स्टोरी हजरत काब की ही जुबानी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ये अपना वाकया खुद बताया। क्या फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने गजवात में शिरकत की, मैं उनमें सब में था सिवाय तबूक के, उसमें नहीं था। और अलबत्ता बदर का वाकया चूंकि अचानक पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको उसमें शरीक होने का भी हुक्म नहीं दिया था, और शरीक होने वालों ना होने वालों पर कोई सख्ती भी नहीं की थी, तो इसमें नहीं शरीक होते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले थे बदर के लिए तो जंग तो उस वक्त प्रोग्राम में नहीं थी शामिल, तो उसमें नहीं ये शामिल हुए थे। और मैं लैलतुल अकबा की बैत में भी हाजिर था, जिसमें हमने इस्लाम की हिमायत और हिफाजत का मुआहदा किया था, और मुझे ये बैत की हाजिरी गजवा बदर की हाजिरी से भी ज्यादा महबूब है। अगरचे बदर वाले लोगों ज्यादा मशहूर हैं, जाहिर है उनकी तो बहुत फजाइल बयान किए गए हैं। और मेरा वाकया गजवा तबूक में हाजिरी का ये हुआ कि मैं किसी वक्त भी इससे ज्यादा खुशहाल और मालदार ना था, यानी अच्छे खाते पीते थे, औसत मालदार थे, बखुदा मेरे पास कभी इससे पहले दो सवारियां जमा नहीं हुई थी जो इस वक्त मौजूद थे। और आप देखेंगे ये जो माल को फितना कहा गया ना, कोई वजह है इसकी। वाकई जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो भी एक इम्तिहान है, लेकिन वो कम इम्तिहान है, या थोड़ा होता है ना तो कम इम्तिहान है, जितना ज्यादा हो जाता है इम्तिहान बढ़ जाता है। हम खुश होते हैं ना कि हमें और ज्यादा मिल गया, और मिले और मिले, और उसकी हिर्स भी करते हैं, लेकिन ज्यादा होना बाज दफा इंसान को अपने अंदर इतना मशगूल कर लेता है कि वो अल्लाह के कामों से भी जाता है, और ये अक्सर होता है आप देखें। वरना अगर आप सोचें कि अगर माल की ना हो फिक्र हो, अगर रोजगार की ना फिक्र हो, तो पता नहीं मैं कितने बड़े बड़े दीन के काम करूं, ऐसा अक्सर होता नहीं है। जिनके पास माल है आप देखें उतने ही ज्यादा, अक्सरियत उनमें उतने ही ज्यादा दीन से दूर हो जाते हैं। इसीलिए कुरान पाक में मुतरफीन की बात आती है ना, जो खुशहाल लोग, किसी कौम में से भी खुशहाल लोग सबसे पहले नबियों के अगेंस्ट खड़े होते थे। तो खुशहाली डजंट मीन कि आप खुशहाल हैं तो अब आपको बड़ा टाइम मिल जाएगा और बड़े दीन की खिदमत करेंगे, नहीं, खुशहाली लग्जरीज लाती है, लग्जरीज अपने अंदर खींच लेती हैं। इंसान आराम तलबी चाहता है, आराम चाहता है, इंसान आराम और आसाइशों के अंदर खो जाता है। इंसान खाने पीने और इन चीजों के अंदर ऐसा लग जाता है उसको फिर याद भी नहीं रहता। तो बहुत ज्यादा होना भी कोई इसके अंदर ऐसी बात नहीं है जिसकी हेयर्स रखें कि हम ज्यादा होगा ही तो कोई काम करेंगे। हो सकता है ज्यादा होता तो आप काम ही ना कर सकते। तो कहते हैं कि मैं तो बड़ा मालदार था, बड़ा खुशहाल था, और आप देखेंगे यही खुशहाली उनको ले बैठी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि गजवात के मामले में मदीना से निकलने के वक्त अपने इरादे को मख्फी रखते थे। जिस सिमत में जाकर जिहाद करना होता था मदीना से, उसके खिलाफ सिमत को निकलते थे ताकि मुनाफिकीन मुखबरी करके दूसरों को बता ना दे। और फरमाया करते थे जंग में इस तरह खदा जायज है। खदा मतलब यानी ऐसे हेर पेर करना कि इधर को दिखाना और उधर को चले जाना, उधर को दिखाना और इधर को करना, ये इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है। यहां तक कि ये गजवा तबूक का वाकया पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त गर्मी और तंदस्ती की हालत में इस जिहाद का कसद फरमाया और सफर भी बड़ी दूर का था। मुकाबले पर दुश्मन की कुव्वत और तादाद भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिहाद का खुलकर ऐलान कर दिया ताकि मुसलमान इस जिहाद के लिए पूरी तैयारी कर सके। और दूसरी बात यह भी है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गजवा है, इसके बाद आपकी वफात हो गई थी। तो इस आखिरी गजवे के अंदर एक मुसलमानों का बहुत बड़ा इम्तिहान और एक बहुत बड़ी तरबियत उनकी हो गई। आपके बाद भी जो भी हालात आएंगे वो उसको फेस करने के काबिल होंगे। इस जिहाद में शरीक होने वालों की तादाद सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक 10,000 से जायद, और हाकिम की रिवायत हजरत मुआज से है कि हम इस जिहाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो हमारी तादाद 30,000 से जायद थी। और 30,000 अच्छी खासी तादाद होती है, और ज्यादा यही मौकफ राजे है, यानी ज्यादा मेजोरिटी यही कहती है कि 30,000 थे। और इस जिहाद में निकलने वालों की कोई फहरिस्त नहीं लिखी गई थी, यानी कोई लिस्ट नहीं बनाई गई थी, इसलिए जो लोग जिहाद में जाना नहीं चाहते थे उनको ये मौका मिल गया। देखिए ना, जाहिर है 30,000 की लिस्ट को कंप्यूटर के उसमें भी दौर में भी आप बनाने लगे तो आसान नहीं है, तो कहाँ वो उस वक्त बनाते कोई लिस्ट। तो उनको जो जाना नहीं चाहते ना, उनको मौका मिल गया कि हम नहीं भी गए तो किसी को कौन सा खबर होगी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिहाद के लिए निकले तो वो वक्त तक खजूरें पक रही थी, बागात वाले उन्हीं में मशहूल थे। इसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों ने सफर की तैयारी शुरू कर दी, और जुमेरात के रोज आपने इस सफर का आगाज किया। आपको पता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमेरात के दिन सफर करना पसंद था। अगर अगर चॉइस हो, अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है तो आप भी अपना जो सफर का दिन है चॉइस हो तो जुमेरात को अपना सफर शुरू किया करें, सुन्नत पूरी हो जाएगी। मेरा हाल ये था कि मैं रोज सुबह को इरादा करता कि जिहाद की तैयारी करूं, मगर बगैर किसी तैयारी के वापस आ जाता। मैं दिल में कहता था कि मैं जिहाद पर कादिर हूं, मैंने मुझे कोई कौन सा मसला है, कोई मुझे निकलना चाहिए, मगर यूं ही मेरा रोज इरादा टलता रहा। यानी आज जाता हूँ, कल कल जाता हूँ, कल कल अच्छा कल कर लेता। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमान जिहाद के लिए रवाना हो गए। अब सारे तैयारी कर रहे हैं ना, ये कहते हैं हाँ ठीक है मैंने जाना तो है, ये नहीं कहा था कि मैंने नहीं जाना, मगर मैं जाता हूँ अच्छा करता हूँ करता हूँ, सुस्ती हो जाती है। फिर भी मेरे दिल में जब वो चले भी गए तो यही आता रहा कि मैं भी चला जाऊंगा। और जाहिर है वो काफिला तो स्लोली चलता है ना, तो मैं बस तेज रफ्तार सवारी पे बैठ के तो जाके उनसे मिल जाऊंगा। और कहते हैं काश मैं ऐसा कर लेता, मगर अफसोस कि ये नहीं हो सका। तो जब इंसान डिले करता है ना तो होता क्या है कि अब वक्त हमेशा हाथ में नहीं रहता, वक्त इंसान के हाथ से निकल जाता है और फिर बाद में इंसान पछताता रहता है। इन्होंने पहले सोचा ना कि मैं तेज रफ्तार सवारी पे सवार होऊंगा, मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा, और वो तो स्लोली चल रहे हैं, जितना वो फासला 3 दिन में करते वो 1 दिन में जाके उनसे मिल जाते। लेकिन डिले करते करते फिर ये हाल आ गया था कि उनको समझ आ गई कि अब वो इतनी दूर चले गए होंगे कि अगर मैं भाग के किसी सवारी पे तेज पे जाऊंगा भी तब भी उनसे नहीं मिल सकूंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद जब मैं मदीना में कहीं भी जाता तो ये बात मुझे गमगीन करती कि इस वक्त पूरे मदीना में यहाँ तो वो लोग नजर आ रहे हैं जो निफाक में डूबे हुए थे, या फिर ऐसे कोई बीमार है, कोई माजूर है जो सफर के काबिल ही नहीं थे। दूसरी तरफ पूरे रास्ते में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा ख्याल नहीं आया, यहाँ तक कि तबूक पहुंच गए। उस वक्त आपने एक मजलिस में जिक्र किया कि काब बिन मालिक को क्या हुआ, वो कहाँ है। तो बनू सलमा के लोगों में से एक आदमी ने कहा, या रसूल्ला, उनको जिहाद से उनके उम्दा लिबास और उस पर नजर करते रहने ने रोका हुआ, यानी वो अब तो अपने आप में ही गुम है, वो तो अपने ख्यालों के अंदर है। तो हजरत मुआज बिन जबल ने अर्ज किया, तुमने ये बुरी बात कही। देखिए सहाबा का किरदार कैसा था, उसी वक्त उनको वहां पे रोका, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बखुदा मैंने उनमें खैर के सिवा कुछ नहीं पाया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। कहते हैं जब मुझे ये खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ वापस ला रहे हैं तो मुझे बड़ी फिक्र हुई। करीब था कि मैं अपनी गैर हाजिरी का कोई उजर घबरा के तैयार कर लेता और ऐसी बातें पेश कर देता जिसके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से निकल जाता, और इसके लिए अपने अहल और दोस्तों से भी मदद ले लेता कि मतलब है कि मैं उसको भी कह दूंगा, उसको भी कह दूंगा कि हाँ मेरा तो ये प्रॉब्लम था, मैं तो इसलिए नहीं गया, और ऐसा वो मेरे दोस्त वगैरह भी हाँ में हाँ मिला देते कि हाँ भाई ये बात सही कह रहे। यहाँ तक कि जब ये खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं तो जो सारे ये बातें थी, ये ख्यालात थे, मेरे दिल से मिट गए और मैंने समझ लिया कि आपकी नाराजगी से किसी ऐसी बुनियाद पर मैं नहीं निकल सकता जिसमें झूठ हो। इसलिए कि मैंने अगर झूठ बोल भी दिया तो अल्लाह ताला तो जाहिर कर देगा ना। तो कहते हैं मैंने सच बोलने का इरादा कर लिया कि मुझे सच ही निजात देगा, मैंने अब जो मर्जी हो जाए मैंने सच ही बोलना, देखेंगे फिर क्या होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, हालांकि ये बड़े एलिक्वेंट थे, मतलब अपनी बात करने में ना बहुत, जैसे होता है कई लोगों को बात करने का एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, वो बात करते हैं तो उनकी बात ठोस होती है, इधर उधर की नहीं मारते, तो उनकी बात दूसरा समझ भी जाता है। तो ये ऐसे थे कि अगर ऐसी बात बोलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन कर लेते, लेकिन अल्लाह ताला तो जानता है ना। तकवा देखिए इन लोगों में कितना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो चाश्त के वक्त, यानी सुबह को सूरज निकलना जब बुलंद होता है उसके कुछ वक्त के बाद मदीना में दाखिल हुए, और आदत मुबारक यही थी कि सफर से वापसी का अमूमन यही वक्त हुआ करता था, और आके जब सफर से वापस आते तो मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे, 2 रकत नमाज पढ़ते थे, फिर हजरत फातिमा के घर जाते थे, फिर बाकी अजवाज के घर जाते थे, पहले नहीं जाते थे, सबसे पहले मस्जिद जाते। इसी आदत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए, 2 रकत अदा की, फिर मस्जिद में बैठ गए। जब लोगों ने ये देखा तो गजवा तबूक में ना जाने वाले जो मुनाफिकीन थे जिनकी तादाद 80 से कुछ ऊपर थी, तो वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए और झूठे बहाने शुरू कर दिए, झूठी कस्में खाने शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो जाहिरी उनकी बातें थी, उनके अकवाल थे, करार थे, उनको कबूल कर लिया और उनके लिए दुआए मगफरत फरमाई और उनके जो दिल के हालात हैं उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। आप तो दिल के हालात नहीं जान सकते। इसी हाल में कहते हैं मैं भी हाजिर हो गया और चलते चलते सामने जाकर बैठ गया। जब मैंने सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुस्कुरा के देखा जैसे नाराज आदमी कभी कभी करता है, कभी अभी आप नाराज होते हैं ना किसी से, फिर भी आप एक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हैं, वो वाली मुस्कुराहट थी। तो बाद रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख फेर लिया, तो मैंने अर्ज किया, या रसूल्ला, आप मुझसे चेहरा मुबारक क्यों फेरते हैं, खुदा की कसम मेरे अंदर निफाक नहीं है, ना दीन के मामले में किसी शक व शुबा में मुबतला हूँ, ना मेरे अंदर कोई चेंज आया। तो आपने फरमाया फिर जिहाद में क्यों नहीं गए, क्या तुमने सवारी नहीं खरीद ली थी। मैंने अर्ज किया बेशक या रसूल्ला, अगर मैं आपके सिवा दुनिया के किसी दूसरे आदमी के सामने बैठता तो मुझे यकीन है कि मैं कोई बहाना घड़ के और उसकी नाराजगी से बच जाता, क्योंकि मुझे यानी बहसो मुबाहसा और बात बनाने में महारत हासिल है, बड़े स्किल्ड थे ये। लेकिन कसम अल्लाह की मैंने ये समझ लिया कि अगर मैंने आपसे कोई झूठी बात की जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्ती तौर पे राजी हो भी जाएं, तो कुछ बईद नहीं कि अल्लाह ताला हकीकत हाल आप पे खोल के मुझसे नाराज करा दे, और अगर मैंने सच्ची बात बता दी जिससे आप अभी तो मुझसे नाराज हो जाएंगे मगर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, और सही बात यह है कि जिहाद से गायब रहने में मेरे पास कोई उजर नहीं था, कितनी सच्ची बात की। मैं किसी बार भी माली और जिस्मानी तौर पे इतना कवि और पैसे वाला नहीं था जितना इस वक्त। आप सरसरम ने फरमाया, इस शख्स ने तो सच बोला। फिर फरमाया, अच्छा जाओ, यहां तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे मुतल्लिक कोई फैसला फरमा दे। मैं यहां से उठकर चला तो बनू सलमा के जो इनका कबीला था उसके चंद आदमी मेरे पीछे लगे और कहने लगे, इससे पहले तो हमारे इल्म में तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तो ये तुमने क्या बेवकूफी की। देखिए लोग भी ना उकसाने वाले बड़े होते हैं। जैसे अगर आज आपको कहीं सच बोल दे और आपको जरा सा भी कुछ मसला हो जाए तो वो कहेंगे, तुम्हें क्या सच बोलने की जरूरत है, तुम बहुत सच्ची बन गई, तुम भी क्या देती कोई बात, तो भुगतो अब अपना सच। और इतना उसको बुरा भला कहेंगे, इतना उसको यानी बेइज्जत करेंगे। तो उन्होंने भी उनको पकड़ लिया, उन्होंने कहा, तुमने ये क्या बेवकूफी की, को तुम बहाना नहीं बना सकते जैसे दूसरों ने किया, वो भी तो पीछे रहे थे, तुम्हारे गुनाह की माफी के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तगफार कर देते, जैसे उनके लिए की थी तो तुम्हारे लिए काफी हो जाती। तो कहते हैं, ये मुझे खुदा की कसम, इन्होंने मुझे इतना मलामत किया, इतना मलामत किया कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं पता नहीं वापस चला ही जाता हूँ, जाके कोई बात कह देता हूँ कि मैंने जो पहले बात की थी वो गलत थी और ये मेरी बात, अब मैं सही बात कह रहा हूँ। इतना यानी उनको जिज कर दिया। मगर फिर मैंने दिल में कहा, मैंने एक गुनाह तो कर ही दिया, अब दो गुनाह बना लो। अल्लाह अकबर। देखिए ना, इंसान कभी सोचता नहीं है, पहले वो एक गलती करता है, फिर अपने झूठ से उसको कवर करके ना तो एक और गुनाह अपने सर ले लेता है। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि पीछे रह जाने वाले में कोई और भी है जिसका मेरे जैसा मामला है, जिसने मेरे जैसे जुर्म किया और उसने इतराफ किया हो। इन लोगों ने कहा कि हाँ, दो आदमी और हैं जिन्होंने तुम्हारी तरह इकरारे जुर्म कर लिया और उनको भी वो ही जवाब दिया गया जो तुम्हें दिया गया। मैंने पूछा, वो दो कौन है। उन्होंने बताया कि मुरारा बिन रबी है और हिलाल बिन उमैया। इब्ने अबी हातिम की रिवायत में है कि उनमें से जो मुरारा थे उनका तो ये सबब हुआ कि उनका एक बाग था जिसका फल उस वक्त पक रहा था, तो उन्होंने अपने दिल में कहा कि तुमने इससे पहले बहुत से गजबात में हिस्सा ले लिया, अगर इस साल ना भी जाओ तो क्या इतना फर्क पड़ता है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये फर्ज ऐन इसको कहा था, यानी फर्ज ऐन क्या होता है, यानी वो फरीजा जिसमें हर एक को शामिल होना जरूरी, ऐसे नहीं है कि कोई, चलो कोई और कर लेगा तो आपके लिए काफी हो जाए। मसलन जैसे नमाज है, कोई और नहीं आपकी जगह पढ़ सकता ना, आप नहीं पढ़नी, तो ये था कि इसमें हर एक ने जाना है। इसके बाद जब उन्हें अपने गुनाह पे शर्मिंदगी हुई तो उन्होंने अल्लाह ताला से अहद कर लिया कि ये मैं बाग जो है ना ये बस सदका कर दूंगा। और दूसरे जो थे हिलाल बिन उमैया, उनका वाकया ये कि उनके अहलो अयाल अरसे से मुतफर्रिक थे, यानी कई कई जगह पे थे, जैसे होता ना कि फैमिली मेंबर्स, कोई कोई कहीं हो, कोई कहीं हो, फिर एक मौका ऐसा आता है कि फैमिली गेट टुगेदर होती है, सारे दूर नजदीक से, अक्सर शादियों पे हमारे यहाँ होता है, जैसे दूर नजदीक से जमा हो जाते हैं, तो उस मौके पे वो सब जमा हो गए। तो ये ख्याल किया कि इस साल में जिहाद पे चलो नहीं जाता, अपनी फैमिली के साथ, अपने खानदान के साथ मैं टाइम स्पेंड कर लूं। और उनको भी जब अपने गुनाह का ख्याल आया तो उन्होंने ऐद किया कि मैं अब अपने अहलो आयाल से अलहदगी इख्तियार कर लूंगा। तो काबिल मालिक फरमाते हैं कि इन लोगों ने जब उनका नाम लिया, वो तो बदर के मुजाहिदीन में से हैं, तो मैंने कहा कि बस मेरे लिए इन्हीं दोनों बुजुर्गों का अमल काबिले तकलीद है। ये कह के मैं घर चला गया। क्या समझ आई इसे बात? ये बात समझ आई कि देखें, बाज दफा इंसान अकेला होता है ना तो खुद ढीला पड़ने शुरू हो जाता है, लेकिन जब उसको सपोर्ट मिलती है ना, उसके साथ दो और उसकी जैसी बात करने वाले मिल जाते हैं, तो वो फर्म हो जाता है, फिर मजबूत हो जाता है, उसको कुव्वत आ जाती है। कहते हैं ना, एक और एक दो नहीं 11 हो जाते हैं, तो वाकई हो जाते हैं। एक बंदा खड़ा होके कोई हक की बात करता है, अब आगे से कोई भी नहीं जवाब देता, सारे खामोश है, तो वो हो सकता है हिम्मत हार दे, लेकिन अगर दूसरा खड़ा हो गया, एक और तीसरा भी खड़ा हो गया, तो उसको कुव्वत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। इसीलिए हक का साथ देने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको क्या पता आपकी एक बात बोलने की वजह से हमारे से क्या होता है, हम क्या फायदा मेरा कहने का, कुछ हो थोड़ी जाना है। नहीं, हो सकता है आप हक में उसका साथ दें तो वो और मजबूत हो जाए, आपने उसके बाजू मजबूत कर दिए, वो खड़ा रहे, उसको जमने में आपने मदद दी, वरना हो सकता है वो भी गिर जाए। दूसरे ये कि इंसान को, हर इंसान को सपोर्ट चाहिए होती है। एक तरफ आप बाहर बैठ के देखें तो आपको सपोर्ट करना है ऐसे इंसान को, दूसरी तरफ आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखें जो इंसान हक के लिए खड़ा हुआ है। तो याद रखिए, आप अपनी जैसे लोगों में जब रहते हैं ना तो आपको सपोर्ट मिलती है, आपके इर्द गिर्द अगर जमात होती है तो आपको सपोर्ट मिलती है। अकेले चलना बाज दफा बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंसान जल्दी फिसल जाता है, गिर जाता है, लेकिन जब जमात साथ होती है ना तो आप फिसलने लगेंगे, आप ढीले पड़ने लगेंगे, आप सुस्त पड़ने लगेंगे। कोई कहेगा नहीं नहीं आप आए, आप क्लास में इतने दिन से क्यों नहीं आए, हम तो आपको याद कर रहे थे। तो अब आपको एक वही आपके साथी हैं, आपके करीब वाले हैं जो आपको हौसला देती हैं, जो आपको खड़ा करते हैं, जो आपकी जो सुस्ती आई या फिर जो भी गफलत हो गई या भूल गए तो आपको याद करा देते हैं। तो ऐसे साथी एक नेमत होते हैं, इसीलिए इंसान को ऐसे साथी अपने इर्द गिर्द रखने चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों में रहना चाहिए। अगर कोई सोचता है कि मैं अकेला ही चलता रहूंगा, अकेले में क्या है, नहीं, हर इंसान को सपोर्ट चाहिए होती। सही, तो इनको भी देखें, उनसे हौसला हासिल हुआ तो अपने आप को जोड़ के रखें, कोशिश करें कि आप अकेले नहीं चले, आपके साथी आपके साथ हों। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हम तीनों के साथ सलाम कलाम करने से मना कर दिया कि बिल्कुल बायकॉट इनका। इस वक्त हम तो सब मुसलमानों से बदस्तूर मोहब्बत करते थे, मगर उन सब का रुख हमसे फिर गया, यानी सब ने बिल्कुल बायकॉट कर दिया। जरा भी कोई, यानी छुप के भी एक इंसान कर सकता ना बात, आप कौन सा हर जगह आके देख रहे थे। लेकिन मैं कहती हूँ तकवा की आला मिसाल आपने देखनी है तो सहाबा से सीखे, कि उनको ये नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देख रहे इस वक्त तो हम जाके बात कर रहे हैं, अल्लाह तो देख रहा है। इस चीज की हमें कमी होती है ना जब जिंदगी में, तभी हम ये बेईमानियां करते हैं, चोर बाजारियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें होता है फलां तो नहीं ना देख रहा, फलां तो नहीं, छुप छुप के काम करते हैं, अकेले में बुराइयां करते हैं, हम मजलिसों में हम लोगों के सामने बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अकेले में बुरे हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने वहां पे जो किया वो भी अल्लाह के लिए नहीं किया, वो भी लोगों को दिखाने के लिए किया। घर में भी जो आए तो अब लोग नहीं है तो फिर हम वैसे ही हो गए जैसे कि हम बुराई में थे, क्योंकि कहीं पे भी हमें अल्लाह की नजरों का एहसास नहीं, ना मजलिस में ना अकेले में। मजलिस में भी लोगों का खौफ और यहाँ पे बेखौफी भी इसलिए कि लोग नहीं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। हजरत इब्ने अबी शैबा रहमहुल्लाह की रिवायत में है कि अब हमारा हाल ये हो गया कि हम लोगों के पास जाते तो कोई हमसे कलाम ना करता, इवन सलाम भी नहीं करते थे, और सलाम ये करते थे तो वो जवाब भी नहीं देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया तो बस। उस वक्त हमारी दुनिया बिल्कुल बदल गई, ऐसा मालूम होने लगा कि ना वो लोग हैं जो पहले थे, ना हमारे बाग ना मकान वो हैं जो पहले थे। इसी चीज को यहाँ पे कहा गया ना कि जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद तंग हो गई इन पे। जाहिर है आप इस पेंडेमिक में देख लें, जब कोविड स्टार्ट हुआ था और हर चीज बंद हो गई थी तो ऐसे लगता जमीन तंग हो गई है। अरे वही घर बार तो सब वही थे, लेकिन हम कैसे आइसोलेट हो गए थे, हालांकि अपनी फैमिलीज के साथ तो सभी रह रहे थे, लेकिन एक चीज आपने महसूस की है कैसे लगने लगा कि जमीन अपनी कुशादगी बावजूद तंग हो गई। तो कहते हैं हमारे वही बाग थे जो पहले थे, सब चीज थे मगर सब अजनबी लगने लगा। कहते हैं मुझे सबसे बड़ी ये फिक्र थी कि अगर मैं इस हाल में मर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरा जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे, या खुदा ना खास्ता इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वफात हो गई तो मैं तो सारी जिंदगी लोगों में जलीलो ख्वार फिरता रहूंगा। तो इसकी वजह से कहते हैं मेरे लिए सारी जमीन वीरान नजर आने लगी, बेगानी नजर आने लगी, और ये एक दो दिन की बात नहीं थी, इसी हाल में हम पर 50 रातें गुजर गई, यानी 1.5 महीने से भी ऊपर। इस जमाने में मेरे दोनों साथी मुरारा हिलाल तो शिकस्ता दिल होके घर में ही बैठ गए, उन्होंने तो अपने आप को आइसोलेट कर लिया, वो तो रात दिन रोते थे। लेकिन मैं जवान आदमी था, बाहर निकलता था, चलता फिरता था, नमाज में मुसलमानों के साथ शरीक होता था, बाजारों में फिरता था, मगर मैं इससे कोई बात नहीं करता था। और ये भी बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि कोई बात ना करे। अब छोटी ये उस तरह से तो नहीं सिमिलर, लेकिन एक जस्ट एक ग्लिम्प्स मैं आपको देना चाहती हूँ। ये पेंडेमिक में जैसे लोग एक दूसरे को, इंसान इंसान को देख के भागता था, इंसान इंसानों से खौफ ज्यादा था, तो कैसा लगता था हमें। तो कहते हैं ना, मेरे सलाम का जवाब देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नमाज के बाद हाजिर होता और सलाम करता तो आपको देखा करता था कि क्या मतलब इनका रिएक्शन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता कि उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया है कि नहीं। तो फिर मैं आपके करीब ही नमाज पढ़ता तो नजरें चुरा के आपकी तरफ देखा देखता था, तो मालूम होता था कि जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो आप मेरी तरफ देखते हैं, मुझे ऐसे था, और जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ देखते हैं। जब लोगों की ये बेवफाई लंबी हो गई तो एक रोज मैं अपने चचाजाद भाई के कतादा के पास गया, जो मेरे सबसे ज्यादा दोस्त थे, यानी एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, कजन भी थे। तो मैं उनके बाग में दीवार फलांद के अंदर दाखिल हुआ और उनको सलाम किया। खुदा की कसम, उन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, ए कतादा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता। अभी ये देखिए कैसी सजा थी एक उनके लिए। इस पर भी कतादा ने सकूत किया, कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने बार बार ये सवाल दोहराया तो तीसरी या चौथी मर्तबा में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जानता है और उसका रसूल। कहती मैं रो पड़ा और इसी तरह दीवार पलांग के बाग से बाहर आ गया। इसी जमाने में एक दिन कहते हैं, एक दिन मदीना के बाजार में चल रहा था कि अचानक शाम का एक बंदा था जो गल्ला फरोख्त करने के लिए मदीना आया करता था, उसको देखा कि लोगों से पूछ रहा है, क्या तुम्हें काब बिन मालिक का पता है। तो लोगों ने मुझे देखकर मेरी तरफ इशारा कर दिया। वो आदमी मेरे पास आया और मुझे शाहे गसान का, गसान के बादशाह का एक खत दिया, एक रेशमी रुमाल में वो था, और जिसमें लिखा क्या था कि मुझे ये खबर मिली है कि आपके नबी ने आपसे बेवफाई की है और आपको दूर कर दिया, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जल्लत और हलाकत की जगह में नहीं रखा, तुम अगर हमारे पास आना पसंद करो तो आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह अकबर, यानी कैसी कैसी आजमाइश, कितनी बड़ी आजमाइश कि यहाँ से तो मुझे तो धिक्कार मिल रही है, यहाँ पे तो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा, तो क्यों ना उधर ही चला जाऊं, मैं वहां पे चाहता हूँ, वहां पे देखो बादशाह ने खुद बुलाया है, बादशाह ने, कोई आम आदमी ने नहीं। यहाँ पे हम कितनी जल्दी बदजन हो जाते हैं कभी मुसलमानों के रवैयों से, छोड़ो छोड़ो ये सारे मुसलमानों को छोड़ के दूसरों में जाके बैठने लगते हैं, दूसरों को अपना करीब कर लेते हैं कि देख लिया है, बड़े मुसलमान ऐसे हैं, हो जाते हैं ना बदजन। ये देखिए कैसे लोग थे, अल्लाह ने इनको आखिरी हद तक आजमाया कि सबकी तरफ से बेरुखी, सबकी तरफ से। तो अब वो कह सकते थे, मेरा यहाँ क्या रह गया, मैं तो तंग आ गया हूं इस चीज से, ऐसा मेरा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया, ऐसी मैंने क्या वो कर दी, और भी तो लोग थे जो नहीं गए। हमारे पास कितनी जस्टिफिकेशन होती है ना, हम मान के नहीं देते अपनी गलती को, अगर मान भी ले ना तो साथ ये जरूर कह देते, मगर इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैं इतनी भी क्या बड़ी बात हो, ये कोई मानना नहीं होता, ये इतराफ नहीं है। इतराफ तो ये है कि हाँ अल्लाह मुझसे गलती हुई है और ये नहीं होना चाहिए, मैं क्यों ऐसा किया, ये नहीं कि और भी तो लोग करते, अगर मैंने कर लिया, अब मान तो लिया कि मैंने कर दिया है ये गलती, अगर मैंने कर दी तो कौन सी ऐसी कयामत आ गई। और फिर अगर कोई फिर भी ना माने तो हम कहते हैं छोड़ो जाने दो इसको, इतने भी नहीं हमें, इतने भिक मंगे नहीं हम, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है, मैं भी कोई चीज हूं, चलो हम दूसरी तरफ चलते हैं, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, अपने किसी किसी से माफी मांगनी हो वो नहीं मान रहा, या इवन अपने माँ बाप को कह देते हैं कि नहीं आप नहीं मानते तो जाएं फिर, मैं भी कोई माफी रोज रोज नहीं मांगने आ रही, बस खत्म। देखिए उनकी क्या थी कि जब उन्होंने ये खत पढ़ा ना, कहते हैं मैंने जब ये खत पढ़ा तो कहा ये एक और इम्तिहान और आजमाइश आ गई कि अहले कुफर को भी मुझसे उम्मीद हो गई, वो भी तमा करने लगे, उनको भी तवक्को हो गई कि मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। यानी मेरी ये हालत हो गई है कि वो भी सोच रहे हैं। इंसान सोचता है ना कि मैं इतना गिर पड़ गया हूं, तो मैं ये खत लेके आगे बढ़ा और एक दुकान पर तन्नूर लगा था उसमें झोंक दिया, मैं जला दिया उन्होंने उस खत को। हजरत काफ फरमाते हैं कि जब 50 में से 40 रातें गुजर चुकी तो अचानक देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासिद खुजैमा बिन साबित मेरे पास आ रहा है। आके ये कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि आप अपनी बीवी से भी अलहदा हो जाए। मैंने पूछा क्या तलाक दे दूं या क्या करूं, उन्होंने कहा कि नहीं, अमलन उनसे अलग हो जाए, उनके करीब ना जाए। इसी तरह का हुक्म मेरे दोनों साथियों के पास भी पहुंचा। मैंने बीवी से कह दिया तुम अपने मेके में चली जाओ और वहीं जाके रहो जब तक अल्लाह ताला कोई फैसला ना करते। अब उनको नहीं पता कि कब फैसला आएगा, महीने से भी ऊपर टाइम हो गया, 2 दिन नहीं यहाँ पे गुजरते। हम जब तक सोशलाइज ना करें, लोगों से मिले नहीं, हम परेशान हो जाते हैं, होम सिक होने लगते हैं। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि जाओ तुम अपने मेके चली जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा मेरी बीवी के साथ तो मैं रहता हूँ और मेरे ये काम करती है और ये कितनी चीजें हो सकती थी। लेकिन समय ना माताना उनकी देखे, हिलाल बिन उमैया की जो बीवी थी खौला बिनते आसिम, ये हुक्म सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज किया, या रसूलल्लाह हिलाल जो है वो एक बूढ़े आदमी है और कोई उनके पास नौकर शाकर नहीं है, तो मतलब नजर भी उनको सही नहीं आता, क्या आप ये पसंद नहीं फरमाएंगे कि मैं इनकी खिदमत करती रहूँ? फरमाया कि खिदमत करने की ममानियत नहीं, अलबत्ता वो तुम्हारे पास ना जाए, यानी कोई ताल्लुक ना रखे। उन्होंने अर्ज किया वो तो बुढ़ापे की वजह से ऐसे हो गए कि इनमें कोई हरकत ही नहीं है, और वल्लाही अब तो मुसलसल ही उन पे गिरियात आ रही है, रात दिन रोते रहते हैं। ये होती है एक तौबा, नहीं खूबसूरत तौबा। तौबा तो हम भी करते हैं लेकिन हमारी तौबा बहुत सूखी रूखी होती है, खुश्क बिल्कुल, जिसमें ना कोई आंसू, ना कोई शर्मिंदगी, ना कोई बेचैनी, बस ठीक है तौबा कर तो लिया। और साथ साथ ये एहसास भी कि हम इतने ज्यादा कोई बुरे नहीं है, ज्यादा कोई बुरे हमने काम नहीं किए हैं, लोग बहुत कुछ बुरा करते हैं, तो साथ अपनी नेकी का भी एहसास है, मगर चलो मैं तौबा कर ही लेती हूँ, मैंने इतना कोई को ऐसे गुनाह तो कुछ नहीं किए। अल्लाह अकबर। काब बिन मालिक फरमाते हैं मुझे भी मेरे बाज मुतालिकी ने मशवरा दिया कि तुम भी जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दो कि जाके वो इजाजत दे दे तुम्हारी बीवी को भी साथ रखने की, जैसे कि आपने उनको दी है हिलाल को। तो मैंने कहा मैं नहीं ऐसा करूंगा। पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दें, इसके अलावा मैं जवान आदमी हूँ, बीवी के साथ रहना एहतियात के खिलाफ है। चुनाचे इसी हाल में मैंने 10 रातें और गुजार दी, यहाँ तक कि 50 रातें मुकम्मल हो गई। तो कहते उस वक्त हमारी तौबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तहाई रात गुजरने के वक्त नाजिल हुई, यानी 50 रातें गुजरने के बाद। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा जो उस वक्त हाजिर थी, उन्होंने अर्ज किया कि इजाजत हो तो काब बिन मालिक को इसी वक्त इसकी खबर कर दी जाए। आपने फरमाया ऐसा हुआ तो अभी लोगों का हुजूम हो जाएगा, रात की नींद मुश्किल हो जाएगी। काब बिन मालिक फरमाते हैं कि 50वीं रात के बाद जो सुबह हुई ना, तो सुबह की नमाज पढ़कर मैं अपने घर की छत पे बैठा था, और हालत वो थी जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया कि मुझ पे मेरी जान भी और जमीन भी बावजूद वसत के तंग हो चुकी थी। अचानक मैंने सला पहाड़ के ऊपर से किसी चिल्लाने वाले की आवाज सुनी, बुलंद आवाज से कह रहा था ए काब बिन मालिक बशारत हो। तो ये बुलंद आवाज से कहने वाले अबू बकर थे जिन्होंने जबले सला पर चढ़कर ये आवाज दी कि अल्लाह ने काब की तौबा कबूल फरमा ली है, बशारत हो। और कहते हैं कि ये खुशखबरी हजरत काब को सुनाने के लिए 2 आदमी दौड़े थे, उनमें से एक आगे बढ़ गया, तो जो पीछे रह गया उसने ये किया कि सला पहाड़ पर चढ़कर आवाज दी। और कहा जाता है कि ये शायद अबू बकर सिद्दीक थे और हजरत उमर थे। तो काब बिन मालिक फरमाते हैं ये आवाज सुनकर मैं सजदे में गिर गया। अच्छा ये भी एक हमारी इस्लाम में एक ये चीज है कि जिस वक्त आपको कोई खुशी की खबर मिले, कोई ऐसी चीज आपको जो खुश कर देने वाली, वो कामयाबी है, वो दुनिया की कोई भी आपको ऐसी नेमत का मिलने का या किसी खुशी का मिलने का या कोई भी ऐसी बात आपको होती है तो आप फौरन सजदे में गिर जाए। इसके लिए आपको वुजू भी करने की जरूरत नहीं, आप जहां है ना सजदे में चले जाएं। ये सजदा जो है ना ये शुक्र का सजदा है। देखिए इनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी थी कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। तो जिसकी अल्लाह तौबा कबूल कर ले फिर उसके क्या कहने, उसके तो नसीब खुल गए। तो कहते हैं मैं इंतहाई खुशी से रोने लगा। देखिए रोना एक खुशी से भी होता है, जैसे वो कहते हैं ना कि इन्ना हु आधा का वा अब का, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। तो खास मुफस्सिरी ने उसकी ये भी तफसीर की है कि अल्लाह हंसाता है और रुलाता है कि कयामत के दिन जब वो जन्नत में यानी जन्नत का उनका परवाना मिल जाएगा जन्नतियों को, तो उनकी खुशी का ये आलम होगा कि खुशी से रो पड़ेंगे। तो वो खुश भी हैं और रो भी पड़े। वो खुशी का भी एक रोना होता है कि इंसान इतना खुश हो जाए कि उसके आंसू बह पड़े। तो मुझे मालूम हो गया कि अब कुशादगी आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद सहाबा कराम को हमारी तौबा कबूल होने की खबर दी। अब सब तरफ से लोग हम तीनों को मुबारकबाद देने के लिए दौड़ पड़े। देखिए सहाबा के अंदर भी कितना खलूस था। ये नहीं कोई कोई जल भुन के बैठ जाए, कोई ये करे कि इतनी भी क्या जरूरत थी, कुरान की आयतें क्यों आ गई इनके बारे में, कुछ ऐसी बात नहीं। एक दूसरे के कोई इल फीलिंग्स नहीं थी। जब हुक्म हुआ तो उन्हीं से ऐसे हो गए जैसे अजनबी हैं। इसका मतलब अपना कुछ नहीं, सब वही जो समेना वो अतान। जैसे अल्लाह का हुक्म हुआ नहीं बात करनी, नहीं बात की, अब बात कर लो करने लग पड़े। तो ऐसे नहीं था कि उनकी पर्सनल कोई किसी के साथ कोई ग्रजेस या पर्सनल किसी के साथ कोई मोहब्बत, वो गालिब आ गई हो अल्लाह के हुक्म पे। यानी मुझे मेरे तो ये बेस्ट फ्रेंड है, अब तो कोई देख भी नहीं रहा, छुपके ही बात कर लेता हूँ, थोड़ी बात कर लेता हूँ, अब तो इतने दिन हो गए, उदास हो गया दिल। नहीं, और आप भी कोई ये नहीं मुंह बना के बैठ गया कि छोड़ो, नहीं, सारे मुबारकबाद देने के लिए भाग रहे हैं। बाज लोग घोड़े पे सवार होके मेरे पास पहुंचे, मगर पहाड़ से आवाज देने वाले की आवाज सबसे पहले मुझे पहुंच गई थी। काब बिन मालिक कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए निकला तो लोग चौक दर चौक मुझे मुबारकबादें देने के लिए आ रहे थे। काब फरमाते हैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, आपके इर्द गिर्द सहाबा कराम का मजमा लगा। मुझे देख के सबसे पहले तलहा बिन उबैदुल्लाह खड़े होके मेरी तरफ लग गए, मुझसे मुसाफा करके तौबा की कबूलियत पे मुबारकबाद दी। कहते हैं तलहा का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलता। देखिए ना ये बात होती है कि कोई आपकी खुशी में खुश हो जाए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ज्यादा टाइम लोग मुबारकबाद देते हैं लेकिन अंदर से जले भुले होते हैं, यूं इसको क्यों ये कामयाबी मिल गई, इसको क्यों ये चीज मिल गई। लेकिन इंसान को वाकई याद रखना चाहिए कि कौन है जो उसकी खुशी में मुखलिस होके शरीक हुआ। आपने अच्छा फिर उसके बाद कहते हैं कि जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आपका चेहरा मुबारक खुशी की वजह से चमक रहा था। आपने फरमाया काब खुशखबरी हो तुम्हें ऐसे मुबारक दिन की जो तुम्हारी उम्र में पैदाइश से लेकर आज तक सबसे बेहतरीन दिन है। अल्लाह हु अकबर, यानी अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए, वाकई इससे ज्यादा क्या अच्छा दिन हो सकता है। ये तो कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह ये हुक्म आपकी तरफ से या अल्लाह की तरफ से। यानी फिक्र ये थी कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया या आप खुद बता रहे हैं। आपने फरमाया नहीं ये हुक्म अल्लाह का है, तुमने सच बोला था, अल्लाह ने तुम्हारी सच्चाई को जाहिर कर दिया। जब मैं आपके सामने बैठा तो अर्ज किया या रसूलुल्लाह मेरी तौबा ये है कि मैं अपने सब माल और मता से निकल जाऊं। अब इसके बाद यानी उनको इतना हुआ ना कि इस माल की वजह से मैं रुक गया, मैं सारा अल्लाह के रास्ते में सदका कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया नहीं कुछ माल अपनी जरूरत के लिए रहने दो तो, यही बेहतर। तो मैंने अर्ज किया अच्छा आधा माल सदका कर दूं। आपने इससे भी इनकार फरमाया। मैंने कहा फिर एक तहाई माल की इजाजत दे दी तो आपने वो कबूल कर लिया। मैंने अर्ज किया या रसूल मुझे अल्लाह ने सच बोलने की वजह से निजात दी है तो इसलिए मैं वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं कभी सच के सिवा कोई कलमा नहीं बोलूंगा। फिर फरमाया जब से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सच बोलने का अहद किया था, कहते आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरी जुबान ने कभी कोई कलमा झूठ का नहीं कहा, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बाकी जिंदगी भी मुझे इससे महफूज रखेंगे। कहा फरमाते हैं कि खुदा की कसम इस्लाम के बाद इससे बड़ी नेमत मुझे नहीं मिली कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सच बोला, झूठ नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलता तो इसी तरह हलाकत में पड़ जाता जैसे दूसरे झूठी कस्में खाने वाले हलाक हुए, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की कि बाद में कि उन्होंने झूठी कस्में, हम पढ़ चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 50 दिन के लिए ही ग़ज़वा तबूक के लिए निकले थे, इनके भी 50 दिन ही पूरे हुए और फिर इनकी तौबा कबूल हुई। तो इसमें बहुत सारे सबक है हमारे लिए, बहुत सारे सबक है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी ना कि ग़ज़वात में कि जिस तरफ जाना होता उसकी मुखालफत में जाया करते थे, ताकि मुखालफीन को ये ना पता चले कि आप किस तरफ जा रहे हैं, किस कबीले से जिहाद कर रहे हैं या क्या। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि आप जो किसी को धोखा देना सही है, नहीं, बल्कि मुराद इस से ये है कि अपना अमल ऐसा करें जिससे मुखालिफीन खुद ही एक उसमें धोखे में पड़ जाएं, जैसे जिहाद के लिए मुखालिफ सिंथ में चले गए, तो बोला कुछ नहीं लेकिन उनको एक जाहिर किया ऐसा। फिर देखें जो मैंने आपको बताया कि थर्सडे का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है सफर के लिए, तो आप भी इसकी कोशिश करें। फिर ये एक और बात है कि किसी बुजुर्ग को या किसी उस्ताद को या किसी को भी झूठ बोल के राजी करने की जरूरत है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो इस वाक्य से हमें ये भी पता चलता है कि सहाबा कराम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी इंतहाई मोहब्बत थी कि उनकी नाराजगी, उनके सलाम कलाम बंद कर देना तो उनको कितना अपने पर भारी महसूस होता था। फिर आप ये देखें कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे कतादा, उन्होंने भी सलाम का जवाब नहीं दिया, और ये नहीं कि वो उनके दुश्मन हो गए थे, बल्कि सिर्फ इताते रसूल। तो इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमा दे उस पे वो कैसे चलते थे, कितने सख्ती से अमल करते थे, और यही उनकी मोहब्बत की भी निशानी है। और ये भी कि देखे जिस वक्त इंसान अपने ईमान वाले साथियों से कभी भी किसी बात की वजह से भी उसके दिल खराब हो जाए, बदजन हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ के कहीं और चल पड़े। अब उनको एक बड़े बादशाह ने लालच दिया था, इसके बावजूद ये हिले नहीं। तो इसी तरह किसी गुनाह से तौबा के वक्त माल का सदका करना, ये भी एक रिवायत हमें पता चलती है। और इनको जब जिन्होंने खुशखबरी थी, जब ये भी रिवायात में आता है, जब वो इनके पास आए तो इन्होंने उनको जो कपड़े पहने हुए थे ना वो उनको सदका के तौर पे दे दिए, वो जो भी शख्स था तो उसको सदका के तौर पे दे दिए। यानी इससे ये पता चलता है कि उस जमाने में, हम और भी रिवायात मिलती हैं कि उस जमाने में ऐसी भी एक यानी एक तरीका था अरबों के अंदर कि खुशखबरी मिलने के ऊपर वो सदका किया करते थे, और ये भी बड़ा प्यारा तरीका है। और हमें उम्मुल मोमिनीन का भी ये तरीका पता चलता है कि उन्होंने भी ऐसे किया था। तो अगर हमें कोई खुशखबरी सुनाए तो अगर हम उसको कोई चीज अपनी तरफ से देते हैं तो ये भी एक अच्छी यानी बात है, और ऐसी चीज को करने में भी कोई हर्ज नहीं है, यानी खुशी के वक्त। और जैसे मैंने आपको बताया कि खुशी के वक्त सदका करना भी एक अच्छी बात है कि इंसान अपना हाथ उस वक्त खोले और सज्दा शुक्र भी अदा करें। अच्छा, एक और बात हमें जो यहाँ पे बहुत अहम बात पता चलती है वो ये भी है कि देखें बाज दफा ऐसे फराइज या ऐसी चीजें होती हैं हमारे सामने जिनमें अगर इंसान कोताही करे, अगर इंसान उनमें सुस्ती करे तो बड़े गुनाह में पड़ सकता है। उस वक्त सुस्ती और कोताही करना इंसान को कहाँ तक पहुंचा देता है, वो ये आप देख चुके हैं इसके अंदर कि किस तरह सहाबी रसूल है, और ये नहीं है कि कोई मामूली बात है, यानी पहले बैते उकबा में ये शामिल हो चुके और इतने गजवात में शामिल हो चुके थे। लेकिन देखिए एक सुस्ती हुई ना, तो सुस्ती को मामूली बात ना समझे। बस दफा इंसान की सुस्ती इंसान को एक एक मुश्किल में डाल सकती है, एक बड़े गुनाह का सबब बन सकती है। और ये भी हमें पता चलता है कि टाल मटोल, इंसान कहता है ना कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अच्छा तरसों कर लूंगा, तो क्या हो गया, अभी कर ही लूंगी, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अक्सर औकात मौका हाथ से चला जाता है, बाद में इंसान कितनी भी कोशिश करे वो मौका हाथ नहीं आता। इसी वजह से जब नेकी का मौका मिले तो उसको हाथ से ना जाने दें, नेकी के मौके को अवेल करें। नेकी के मौके रोज नहीं आते, और जैसे बाद में वो इतना पछताए कि काश मैं निकल जाता, काश मैं उस वक्त ही निकल जाता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, उस वक्त ही मैं चला जाता। लेकिन देखे ना, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता। तो वो सारे हमें सबक मिलते हैं। इसी तरह इन इन लोगों की नीयतों में भी कोई खराबी ऐसी नहीं थी, इनके कोई ये नहीं थे कि मुनाफिक थे, ये नहीं थे कि उनकी नीयतें कोई खालिस नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से एक यानी इस चीज को एक गुनाह कंसिडर हुआ ये उनकी उसमें। और ये भी हमें समझना चाहिए कि हम ये ना सोचें नहीं 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 हमारे तो दिल बड़े अच्छे हैं और क्या हो गया अगर हम से ये छोटा सा काम हो गया, छोटी सी यही गलती हुई है ना तो क्या हो गया, वैसे तो मेरी नीयतें बड़ी अच्छी हैं, वैसे तो मेरे काम आगे पीछे इतने अच्छे हैं। नहीं, उसी बात को भी ये ना सोचेंगे कोई बात नहीं अगर ये भी हो गया तो, वैसे तो मैं नेक हूं ना, अगर आज मेरी एक नमाज कजा हो गई तो ऐसा क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, इंसान हमेशा अपनी हर गलती के ऊपर इंतहाई अफसोस, इंतहाई दुख और इंतहाई अल्लाह ताला के सामने आजजी के साथ पड़ जाए, आजजी करे अल्लाह के सामने, और कभी इस घुमंड में ना आए कि मैंने तो वैसे आगे पीछे इतने कारनामे किए, मैं तो क्या हो गया अगर अभी मेरे से हुआ। ठीक है, तो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं ये आयात, और ये भी कि ये दोनों आयतों से हमें पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते में जब हम निकलते हैं और फिर हम अल्लाह ताला के रास्ते में जो भी परेशानी या जो भी वो आती है, जहाँ पे तो साथ और उसरा था तो उसके अंदर भी घबराएं नहीं, और जो अल्लाह ताला का रास्ता है उसके ऊपर चलते रहना, उसके उससे हटना नहीं है। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाए। देखिए इनको सच्चाई नहीं बचाया ना, ठीक है, सच्चा सच बोला इन्होंने तो ये बचे, अगर झूठ बोल देते तो क्या होता। ठीक है, आप दुआ मफरत कर देते, ना आपने मामला तो अल्लाह के हवाले कर दिया था, फिर अल्लाह के हवाले करने के बाद अल्लाह तो जानता है ना, तो पता चलता है कि देखिए एक और बात बड़ी अहम सबक हमें यहाँ से मिलता है कि याद रखें जब दीन को हमारी जरूरत हो ना और हम खुद को संभाल संभाल के बैठे रहे तो देखा है कितना बड़ा गुनाह बन गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ईच वन ऑफ यू चले मेरे साथ, तो इंसान कभी सोचता नहीं तो क्या हो गया, नहीं तो क्या ये है कोई मेरे करने से ही तो नहीं होना, वहां पे तो लड़ाई भी नहीं हुई। यहाँ तो होता ना कि भाई वो कहते कि हाँ तो क्या हो गया, हम जंग में नहीं शामिल हुए लेकिन हम नहीं गए तो क्या हो गया, वहां कौन से जंग हुई थी तो हमारे जाने से भी क्या फर्क पड़ जाना था। बात ये नहीं है, बात ही इताअत की। ठीक है, तो अपनी आप को जस्टिफिकेशन देना हम बंद कर दें। जब जस्टिफिकेशन देते हैं तो इसका मतलब है कि अंदर शर्मिंदगी नहीं है। और हमें देखें ये भी पता चलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आके मस्जिद जाया करते थे जब सफर से वापस आते थे, और वहां पे नफल अदा करते थे। तो ये भी एक सुन्नत है। और सच्चों का साथ देने की यहाँ पे एक बात, ये बहुत अहम बात है। देखिए सच्चाई जो होती है ना, सिर्फ खुद ये नहीं कि हमने खुद सच बोलना है, बल्कि यहाँ पे कहा जा रहा है कूनू मा सादिकीन, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो और सच्चों में से हो जाओ। जैसे इन्होंने तकवा इख्तियार किया ना, इनको ये था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो राजी कर लूंगा झूठ बोल के, उनको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है, यही तो तकवा है। और फिर सच्चों में से हो जाओ, यानी सच्चे लोगों का साथ दो उनका। हदीस में आता है ना, जो शख्स सच बोलता है और सच बोलता रहता है तो अल्लाह ताला उसको सच्चों में लिख लेता है, मा सादिकीन, अल्लाह के यहाँ भी वो सच्चों के रजिस्टर में लिखा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन में हर अखलाक की खराबी हो सकती है, मगर दो चीजें कभी नहीं हो सकती, एक बददियानती और एक झूठ, ये दो चीजें नहीं हो सकती। मोमिन सच्चा होता है, मोमिन बुजदिल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। तो देखिए अब यहां से हमें पता चला सच का साथ देने में ही निजात है, और सच्चे लोगों के साथ रहना चाहिए। ईमान वालों को अपनी जो सोबतें हैं, जो अपने सपोर्ट है, जो अपनी मुलाकातें हैं, ऐसे लोगों से रखनी चाहिए जो सच्चे हों। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जब आप दोस्त चूज करें, क्योंकि उनकी सोबत इख्तियार करेंगे तो फिर खुद भी सच्चाई पे रहेंगे। तो याद रखें, ये जो दोस्त होते हैं ना, वो उनके बारे में यही है, जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है ना, ये मुहावरा है ना, वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, अच्छे दोस्त बनाओ, लायक दोस्त बनाओ, लेकिन हम खुद अपने लिए समझते हैं हम किसी को भी दोस्त बना लेना, दोस्त ही बनाने हैं। नहीं, इंसान कयामत के दिन उनके साथ ही उठेगा जिनसे वो मोहब्बत रखता होगा। तो हम किन के साथ उठना चाहते हैं? उन्हीं के साथ दोस्तियां करें। तो इनसे फिर दोस्ती करके सिर्फ दावतें नहीं खानी, सिर्फ मेल मुलाकातें नहीं रखनी, सिर्फ पिकनिक्स नहीं करनी, बल्कि उनके सच में उनका साथ देना है। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं ठीक है सच्चे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन मा सादिकीन हम नहीं बनते। यानी जब कोई सच के लिए खड़ा होता है तो हमारे मफाद बीच में आ जाते हैं, अगर मैंने इसका साथ दिया तो मुझे इतना नुकसान हो जाएगा, मेरे लोग मुझसे छूट जाएंगे, फलां मेरे बारे में क्या कहेगा, कितने सारे खदशात आने लगते हैं, वो मुझे छोड़ ना जाए, वो ना मुझे छूट जाए, मेरे पैसे का नुकसान ना हो जाए। तो हम नहीं सच्चों के साथ खड़े होते भाई, खुद ही जाओ अपने, बड़े सच सच ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, हम साथ नहीं दे सकते। तो सच्चों के साथ ताउन करना भी जरूरी है, ठीक है? अक्सर ये होता है कि सच्चे जो होते हैं, कहते हैं इसको सच्चे साचे का बुखार चढ़ा हुआ है आजकल, बड़ा सच बोलती है, तो ये बात नहीं। उनके खिलाफ प्रोपोगंडा नहीं करें, उनकी बुराइयां ना करें, बल्कि उल्टा उनके साथ ताउन करें। तो ये एक पॉलिसी अल्लाह ताला ने दे दी इस वाक्य के बाद कयामत तक के लिए, कि आपने हमेशा सच्चों का साथ देना है ईमान वालों, ठीक है? मा काना ली अहले मदीना थी, नहीं है मदीना वालों के लिए, वह मन हाउला हूं मिनल आराबी, और उनके लिए जो उनके इर्द गिर्द आराबी लोग, जो बद्दू लोग रहते हैं, जो मदीना में रहने वाले लोग हैं और जो बद्दू लोग इर्द गिर्द रहने वाले, उनके लिए जेबा नहीं है, उनके लिए लायक नहीं है क्या, यतखल्लफु अर रसूलिल्लाह, कि वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रहे। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले नहीं थे ना, अल्लाह ताला उनको डांट पिला रहा है कि मदीने वालों को और जो इनके आसपास के लोग हैं, उनको ये तो जायज ही नहीं, उनको ये तो जेब ही नहीं देता कि वो पीछे बैठे रह जाएं। यानी अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए, इतनी मुश्किल, इतनी तकलीफें उठा रहे हैं, इतने मुश्किल हालात में वो निकले, उनको नहीं गर्मी लगती क्या? हाँ, उनके नहीं फल पके हुए क्या? उनको नहीं भूख प्यास लगती क्या? उनको नहीं थकावट होती क्या? उनको कौन सा कोई लग्जरी सवारियां मिली हुई थी? उनको नहीं सवारी की परेशानी थी क्या? सब चीजें थी, लेकिन वो निकले। तो अब कोई किसी को जायज नहीं है कि जो अपने आप को ईमान वाला कहे कि वो पीछे रह जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके मुश्किलें उठा रहे हैं। वला यरगबु बि अनफुसिहिम अन नफ्सिही, और ना ही ये लायक है कि वो अपने बेपरवाह हो जाए अपने नफ्सों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे आराम हो रहे हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच रही है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल हालात में निकले हुए हैं। तो ये चूंकि अपने आप के अंदर इतने मशगूल है, अपने माल में, अपने चीजों में, अपने दौलत में, अपने या और अपने धंधों में, कि उनको ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह ही नहीं है कि देखो वो कितने जाके एक मुश्किल के अंदर अपने आप को डाला हुआ है, तो हम निकले। और ये अपने आप में मगन है, यानी अपनी जात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से ऊपर कर रहे हैं, अपनी जात को आपसे ज्यादा आगे किया है इन्होंने। हजरत उमर ने फरमाया था ना कि या रसूल मुझे आप हर चीज से ज्यादा महबूब है सिवाय अपनी जान के, तो आपने फरमाया उमर ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो हज़रत उमर ने फिर फरमाया था अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब है। सच्चे लोग थे ना। हम तो आज ऐसे ही किसी से ऐसी मोहब्बत हो भी ना तो मुझे जान से प्यारी, वो मेरी जान है, उसके अंदर मेरी जान है, उसके बाद जब किसी को जरूरत हो तो फिर पता ही नहीं है कि जान कहाँ और क्या उसके ऊपर गुजर रही हो। तो वो लोग सच्चे थे, तो उन्होंने कहा मैं आपको हर चीज से ज्यादा आप मुझे महबूब हैं सिवाय मेरी अपनी जान के। तो अल्लाह ताला के रास्ते में अगर वो निकले हैं तो ये मतलब नहीं कि ये आराम से बैठ जाएं और ये पीछे आराम फरमाते रहें, और वो गए हैं तो वो जाके वहां पे मुश्किलें बर्दाश्त करें। ठीक है, ये समझ आ रही है बात? तो इसलिए कि इन्होंने, और ये इनको जायज नहीं है कि ये अपनी जात को प्रायोरिटी दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जो भी ईमान का दावा करने वाला है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा महबूब रखना है, वरना उसका ईमान मुकम्मल नहीं। हम भी सोचे ये बात कि वो तो थके थे इस रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, वो तो अल्लाह के रास्ते में मुश्किलें बर्दाश्त करते थे, मुशक्कतें, भूख प्यास, हमने कितना काम किया है इस रास्ते में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाके लोगों को बताएं और लोगों की बातें सुने और लोगों के ताने सुने और ये सारी मुश्किलात से गुजरे, और हम आज आराम फरमाते रहे, हम आज कुछ भी ना करें। तो वो करते थे, वो उनको तो करना ही चाहिए था, हमें तो कोई जरूरत नहीं करने की। तो अपनी जानों को उनसे ज्यादा ही समझा ना, फिर हमारी जान ज्यादा है उनसे। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है उन्होंने किया तो किया होगा, हमें क्या मुसीबत है कि हम करें। कहीं हम भी अपनी जानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से ज्यादा अजीज तो नहीं रख रहे? उन्होंने करके एक एग्जाम्पल सेट कर दी जिसके पीछे हमें चलना है। तो हमारे लिए भी ये जायज नहीं है कि हम अपनी मसरूफियात, अपनी शौक और अपने और कामों में इतने गर्क हो जाएं कि हमें ये परवाह नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने जमाने में कितनी कितनी लोगों की बातें सुनी थी, कितने अपने आराम कुर्बान किए थे, कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त थी, और मैं कुछ भी ना करूं। तो फिर अब ये तो मेरे और आपके लिए भी है। वो मुश्किल में पड़े पढ़ते रहे, हम आराम करें। अच्छा, दालिका, ये आप देखें, ये बात इतनी जबरदस्त है और जरा समझने वाली है। मैंने आपको कहा ना कहीं कहीं मुश्किल थोड़ी सी आयत के अंदर, क्योंकि लंबी है ना तो आप उसके अंदर लॉस ना हो जाए। दालिका ये भी अन्नहुम, बवजह इसके कि बेशक उन्हें, ला युसीबुहुम ज़मअउन, नहीं पहुंची उनको कोई प्यास, वला नसबुन, ना कोई थकावट, वला मखमसतुन, और ना ही कोई भूख, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वला यताउन मौती अन यगीज़ुल कुफार, ना उन्होंने रोंदा किसी जगह को के गुस्सा दिलाए काफरों को, वला यनालूना मिन अदुविन, और ना ही उन्होंने लिया किसी दुश्मन से कुछ लेना। ये सारे नो करके ना उन्होंने भूख प्यास बर्दाश्त की, ना उन्होंने थकावट बर्दाश्त की अल्लाह के रास्ते में, ना उन्होंने रोंदा किसी रास्ते को काफरों को गुस्सा दिलाने के लिए, ना उन्होंने काफरों से कुछ लिया, इल्ला मगर मगर कुतिबा लहुम बिही अमलन सालेह, लिख लिया गया उनके लिए नेक अमल इसके बदले में। यानी अल्लाह के रास्ते में चाहे उन्होंने भूख बर्दाश्त की, चाहे प्यास। अब लड़े तो नहीं, देखिए वहां पे तो जंग ही नहीं हुई थी, वो वैसे ही वहां पे स्टे करके आ गए थे वापस। उन्होंने ना लड़ाई की वहां पे, ना ही उन्होंने वहां पे कोई दुश्मन का सामना किया, मगर हाँ भूख थी, प्यास थी। अब बताया गया, चाहे लड़े नहीं भी, इस रास्ते में जब से वो घर से निकले, उन्होंने एक एक कदम उठाया, उन्होंने जो भी किया, उन्होंने यानी घोड़े दौड़ाए, उन्होंने काफरों के साथ में से दुश्मन से कुछ लिया, कुछ कुछ बदला लिया, या कुछ माले गनीमत कहीं से हासिल आया, कुछ भी, लेकिन जो भी इस रास्ते में हुआ वो अल्लाह ताला ने नेक अमल में लिख दिया। सुभान अल्लाह। इससे हमें साफ पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते में जब आप निकलोगे, तो अगर भूख प्यास भी बर्दाश्त करनी पड़ जाए तो वो जाया नहीं है। चाहे आप इल्म लेने के लिए निकले, चाहे आप दावत देने के लिए निकले, अल्लाह के काम के लिए आप निकलते हैं तो देखें तो सही, ये राहे वफा है। अगर आप वफा करेंगे तो अल्लाह ताला भी कमी नहीं करता, पूरा पूरा सिला देता है। अल्लाह अजर जाया नहीं करता मोहसिनीन का। मोहसिन कौन होता है? जो बेस्ट लेवल पे जाके, एहसान के लेवल पे, खूबसूरती के साथ नेक अमल करे अल्लाह की खातिर, कि अल्लाह तू देख रहा है ना, ये तेरे लिए है, उसके काम में हुसन हो, मोहसिन से है ना, हुसन से, अल्लाह ताला उसके अजर को जाया नहीं करेगा। तुम चाहे खर्च करोगे, चाहे आगे देखिए आ रहा है, वला युन्फिकुना नफकतन सगीरा तम वला कबीरा, और ना कोई खर्च करना छोटा या बड़ा। किसी ने छोटा भी खर्च किया था, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाके एक सहाबी सारी रात एक यहूदी के वहां पे उस पे काम करते रहे, और सुबह आके उन्होंने एक मुट्ठी भर खजूर उनके पास थी, वो लाके उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। तो आपने सारे माल के ढेर के ऊपर उस खजूर को रख दिया कि ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की खातिर इन्होंने दी है, और ये भी अल्लाह के रास्ते में छोटी चीज नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो खजूर को भी बहुत पहाड़ के बराबर कर देगा कयामत के दिन। इसी तरह किसी ने बड़ा सदका किया, हजरत उस्मान 100 ऊंट कजावों समेत, पालान समेत, रस्सियों समेत लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दिए। और इसी तरह उन्होंने आके 1,000 दीनार अल्लाह के रास्ते में दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि आप वो दीनारों को उलट पुलट करते जाते थे और फरमाते थे, आज के बाद उस्मान कोई भी अमल ना करे तो बस यही काफी है। और कई जालिमों ने इनके ऊपर तान किया, इन अल्लाह ताला माफ करे, बुरा भला हजरत उस्मान को कहना, हजरत अबू सिद्दीक को कहना, जिनके बारे में बशारते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के बाद कुछ भी ना करे उस्मान, काफी है उसके लिए, यही काफी है। अल्लाह अकबर। और ये भी फरमाया था, ये जो भी करे, एक रिवायत में आता है, आज के बाद ये जो भी करे इनको कोई नुकसान नहीं है। इन्होंने तो अपना प्रूफ कर दिया, ये कौन कह सकता है कि ये उसके बाद मुर्तद हो गए थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ऐसा कहने वाले भी दायरा इस्लाम से निकल जाता है जो ऐसी बात करे सहाबा कराम के बारे में, इनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी और उनकी गवाहियां अल्लाह ने कुरान में देखे जगह जगह पे दी हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, उन्होंने पार की कोई वादी, यानी वो चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं ना, सिर्फ अभी कौन सा कोई लड़ रहे हैं, लेकिन वो जो चलना भी है ना उनका, वो भी इल्ला कुतिबा लहुम, मगर लिख लिया गया उनके लिए। किस लिए लिख लिया गया? लियज्जियहुमुल्लाह, ताकि बदला दे अल्लाह उनको। कैसा बदला? अहसना मा कानू यामलून, बेहतरीन का जो कुछ थे वो अमल करते, अल्लाह ताला उनको बेस्ट बदला दे। अल्लाहु अकबर। तो खिताब तो जैसे उनके उसमें है कि अहले मदीना के लिए जायज नहीं था, उनके लिए जायज नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और ये बैठे हुए हैं पीछे, और इनको ये नहीं होता कि वो निकले, इन्होंने अपनी जानों को उनसे ज्यादा समझ लिया। लेकिन उसके बाद हमारे लिए भी इसके अंदर सबक है, और इसमें भी कि ये जितना रास्ता उनके लिए तो ऐसा था ही, सबके लिए है। जो भी अल्लाह के रास्ते में निकलेगा अपनी जान खपा रहा है, लेकिन जब रास्ते में निकलते हैं काम करने के लिए निकलते हैं, कहीं भूख भी लगेगी, कहीं प्यास भी लगेगी, कहीं आप सारा दिन खड़े रहेंगे, थकावट भी आपको होगी, भाग भाग के काम कर रहे हैं, थकन तो हो जाती है, चलना फिरना कहीं कुछ, तो उस सारे का याद रखना जाया नहीं है, जाया नहीं है। छोटी या बड़ी अमाउंट भी आप खर्च करेंगे, कोई भी तकलीफ उठाएंगे इस रास्ते में, कोई मुशक्कत कर रहे हैं, कोई एफर्ट आपकी तरफ से ना, जरा भी कोशिश, हद तक एक कदम उठाना भी एक एक कोशिश है ना, एक आपने कदम उठाया ही है, ये भी सब इबादत है, ये भी सब सवाब के काम है, ये सारा टाइम आप इबादत में। अब आप ये बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी अगर नजर कमजोर है, आपकी बैक दुखती है, आपसे बैठा नहीं जाता, आप थक जाते हैं, आपको भूख लग रही है, आपको कुछ हो रहा है, कभी कभी रोजे में हमारी क्लासेस हो रही हैं, अब थकावट ज्यादा हो गई है, रोजा भी लग रहा है, तो ये सारी चीजें याद रखना, ये जाया नहीं है, खुदा की कसम ये जाया नहीं है, कुरान इस चीज की गवाही दे रहा है कि ये याद रखना, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिहुन, इल्ला कुतिबा लहुम लियज्जियहुमुल्लाहु अहसना मा कानू यअमलून, अल्लाह बदला देगा इसका, ये अल्लाह का वादा है। दुनिया में इंसान नहीं कुछ दे सकता दूसरे को, और इंसानों से तवक्को भी नहीं करनी चाहिए, इसको इस काम को शाबाशों के लिए नहीं करना, इस काम को इसलिए नहीं करना कि मेरी कन्वीनियंस होगी तो मैं निकलूंगी, मेरे का सारे काम हो जाए, मेरे सारा ये हो जाए, फलां हो जाए, जब मुझे फरागत मिलेगी तो मैं आऊंगी, नहीं, ये तो बड़े मर्तबे वाले काम है। सहाबा ने तो नहीं ये कहा, उन्होंने तो नहीं ये कहा कि हम फल उतरेंगे तो जाएंगे, हम आराम कभी होगा तो जाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी तो जाएंगे, वो भी कह देते जब मेरी फैमिली बिल्कुल सेटल होगी तो हम जाएंगे, हमारे बच्चे अभी छोटे, हमारे फ्लाह अभी हैं, हमारे घर अभी हैं, पीछे कौन देखेगा, हम तो 2 दिन नहीं घर से जा सकते, पता नहीं वापस आएंगे, कुछ नहीं, बस वो अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े, तो अल्लाह कदरदान है, अल्लाह ऐसी कदरदानी करता है, आपके पास थोड़ा है थोड़ा लगाओ, ज्यादा ज्यादा लगाओ, अगर एक कतरे बराबर भी लगाया तो उसका भी अल्लाह बदला देगा, उसका यहाँ एक लुकमा एक खजूर किसी को देने का, दुनिया में तो शायद कोई उसको कुछ समझे भी ना, लेकिन एक खजूर को अल्लाह ताला ओहद पहाड़ के बराबर कयामत के दिन कर देगा इस बंदे के इखलास की वजह से, उसके पास शायद एक खजूर ही हो तो उसने दे दी। तो ये जब आप इल्म के लिए भी बैठते हैं ना, तो आप अल्लाह के रास्ते में कभी इसको बोझ ना समझे, कभी इन थकन को सर पे ना सवार करें, हाय मैं थक गई, हाय बस आज बड़ी में, हाय आज बड़ी गर्मी थी, बड़ी मेहनत हुई, हाय वहां पे तो मुझे प्यास भी लग गई थी, वहां पे मुझे ये हो गया था, मुझे बड़ी मुशक्कत हुई, मुझे ऐसे हालात भी नहीं वो फेवरेबल, नहीं, हालात फेवरेबल होने का इंतजार ना कीजिए, आप जिस हाल में भी जहां भी हैं अल्लाह के काम के लिए निकलिए, आप एक कदम भी लेंगी आपकी गाड़ी चलेगी ना, वला यताउन मौतियन, ये भी है कि जमीन को लताड़ा उन्होंने, लताड़े यानी वो चले ना उस जमीन के ऊपर, उनका चलना भी काफरों को गुस्सा दिलाता है कि ये मुसलमान इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, तो आप जब चलते भी हैं अल्लाह के रास्ते में, एक एक कदम भी उठाते हैं, तो वो भी जाया नहीं, उसकी भी आपको अजर मिल रहा है, आपकी गाड़ियां चल रही हैं उसका भी अजर मिल रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला के नोटिस में सब कुछ है, और लिखी जा रही, एक एक कदम लिखा जा रहा है, कुतिबा से आपको तसल्ली दिला दी गई, वरना अल्लाह के हाँ लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे तो भूल चूक है ही नहीं, मगर ताकि आप तसल्ली में आ जाए कि लिख लिया गया है, पक्की बात हो गई है, मेरा एक कदम भी जाया नहीं है, मेरी ये जो भूख मुझे लगी ना, शायद साथ वाली खड़ी भी आपकी साथी को पता भी ना हो कि आपको भूख लगी भी है, शायद उसको ये घर वालों को आपके एहसास भी ना हो कि ये कितना थक जाती है, अरे आपने पढ़ना है, या आप उसके बाद इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, या आप असाइनमेंट कर रहे हैं, या आप अपने इतना जहन नहीं है लेकिन फिर भी ये कोशिश किए जा रहे हैं, इसमें मेहनत लगती है, तो इसको कदर की निगाह से देखा करें कि जिस वक्त अल्लाह आपसे ये काम ले रहा हो ना, तो फखर किया करें इस पे, अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र किया करें, ना कि मुंह बनाया करें, ना कि बिल्कुल अपने आप के ऊपर तरस खाने वाली सिचुएशन में चले जाएं कि हाय हाय देखो दुनिया सारी इतने मजे कर रही, मेरी मुसीबत एक पड़ी, मुझे क्या जरूरत था ये कोर्स लेने की, मुझे क्या जरूरत थी ये काम लेने की, कर लेंगे और कोई लोग कर लेंगे, मैं ही रह गई थी।